ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए भक्तों, आज हम ये जानेंगे कि बाबा कितने प्रखर विद्वान और कितने बड़े ज्ञानी थे।
ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।
कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान न था, और ऐसी ही धारणा नाना साहेब की भी थी। नाना साहेब चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था, तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था। उनका मत था कि बाबा संस्कृत भाषा से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। बाबा उनके मन की बात समझ गए और उन्होंने मन ही मन विचार कर लिया उनके भ्रम का निवारण करने का। एक समय नाना साहेब बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और अस्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे। बाबा ने पूछा, नाना तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो? नाना ने कहा, बाबा मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूं। बाबा ने कहा, कौन सा श्लोक है वो? बाबा ये भगवद गीता का एक श्लोक है। बाबा ने कहा, जरा उसे उच्च स्वर में भी तो कहो, मैं भी तो सुनूं। तब नाना ने भगवद गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक बाबा के सम्मुख पढ़ा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। बाबा ने जब यह श्लोक सुना तो उन्होंने नाना से प्रश्न पूछा, नाना क्या तुम्हें इसका अर्थ पता है? जी महाराज, नाना ने कहा। अच्छा, अगर तुम्हें पता है तो मुझे भी सुनाओ। तब नाना इसका अर्थ कहने लगे, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को ठीक ढंग से दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे ज्ञानी जिसे ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। बाबा ने कहा, नाना मैं इस प्रकार का छोटा सा भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो हर एक शब्द और उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण के साथ इसे समझाओ। नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। बाबा ने पूछा, क्या साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है? नाना ने कहा, नमस्कार के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता बाबा। बाबा ने पूछा, फिर परिप्रश्न का क्या अर्थ है? नाना ने कहा, प्रश्न पूछना। फिर बाबा ने पूछा, प्रश्न का क्या अर्थ है? नाना ने फिर कहा, वही प्रश्न पूछना। अब बाबा ने उनसे यह प्रश्न पूछा, नाना यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? क्या व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? नाना ने कहा, बाबा मुझे तो परिप्रश्न का कोई दूसरा अर्थ पता ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, सेवा याने ये कौन सी सेवा है? नाना ने कहा, बाबा वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। बाबा कहने लगे, अच्छा तो क्या ये सेवा पर्याप्त है? नाना ने कहा, बाबा हमें तो इससे अधिक सेवा का कोई विशेष अर्थ पता नहीं है। तो फिर ये बताओ, दूसरी पंक्ति के उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम में क्या तुम ज्ञानम शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करके इसका कोई अर्थ निकाल सकते हो? नाना ने कहा, जी हां। बाबा ने पूछा, कौन सा शब्द? नाना ने कहा, अज्ञानम। बाबा ने कहा, अच्छा नाना, ज्ञानम के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? नाना ने कहा, नहीं बाबा, शंकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। अरे भाई, नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या बुराई है? बाबा, मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। बाबा कहने लगे, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश किया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे, यानी कि स्वयं ज्ञान स्वरूप? हां बाबा, वे थे तो ज्ञान अवतार, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। इस उत्तर के बाद बाबा ने अब प्रश्न पूछा, नाना, क्या तुम्हारी समझ में अब भी नहीं आया? नाना हतप्रभ हो गए, उनका घमंड चूर हो चुका था। जब बाबा ने उनकी ऐसी हालत देखी तब बाबा स्वयं उनको इसका अर्थ समझाने लगे और कहा, नाना, ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त नहीं है। अरे, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, जबकि प्रश्न तो उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो स्वयं करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूं, जो ऐसी भावना से कार्य करता है वह सेवा नहीं कही जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वह विद्यमान है। यदि हम इस प्रकार आचरण करें तो हमें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और यही बात श्लोक में बताई गई है। नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। तब बाबा ने कहा, ज्ञान का उपदेश कैसा है, अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा? अज्ञान का नाश करना ही तो ज्ञान है, अंधकार नष्ट करने का अर्थ ही प्रकाश है। शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। सद्गुरु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद हैं। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूं, एक प्राणी हूं, दुर्बल और असहाय हूं। गुरु इन अज्ञान रूपी जड़ को काटकर फेंक देता है और इसीलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्य जो जन्म जन्मांतरों से ये धारणा करते आए हैं कि मैं तो जीव, दुर्बल और असहाय हूं, गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो, तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूं। जब तक इन त्रुटियों का उसे दिग्दर्शन नहीं कराया जाता, तब तक शिष्य को यह कभी अनुभव नहीं हो सकता कि ईश्वर, जीव और शरीर क्या है, उनमें क्या अन्योन्याश्रित संबंध है, तथा वे परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न हैं, अथवा एक ही हैं। इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि जीव जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है, उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। बाबा ने आगे कहा, नाना, प्रणिपात का अर्थ है शरणागति, और शरणागत होना चाहिए तन मन धन से, अर्थात अनन्य भाव से। कृष्ण अन्य ज्ञानियों की ओर क्यों संकेत करते हैं? सदभक्त के लिए तो प्रत्येक तत्व वासुदेव है। कोई भी गुरु अपने भक्त के लिए कृष्ण है और गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है और कृष्ण इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा। चूंकि श्री कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त और गुरु विद्यमान हैं, इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा उल्लेख किया।
साई राम बोलो, साई श्याम बोलो,
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 साई राम बोलो, साई श्याम
बोलो।
देखा भक्तों आपने, हमारे बाबा कितने शांत और सरल रह करके चुपचाप सुनते रहते थे, परंतु समय आने पर कैसे अपने भक्तों के लिए ज्ञान का भंडार खोल के उनका कल्याण करते थे। अरे इस सद्गुरु की क्या क्या बातें कहूं और क्या क्या बातें छोड़ दूं। महासागर हैं हमारे साई बाबा। ऐसे बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और आप सब लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल हो और पूज्य बाबा की कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं शैलेंद्र भारती आज की इस कथा को यहीं पर विराम देता हूं। साई राम।
सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, सोयों डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, सोयों डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी।